भजन करने में भी यही होता है, तो उसी समय में यदि भजन छोड़ दिया तो इसलिए उस समय भी स्थिर रहना। और सुकृति मैंने पूर्व जन्म में जाई जन्म में हमने जो अच्छे अच्छे काम लोकोपकारी और सब किया काम किया है उससे सम्मान मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा और संसार की और चीज़ें जो दूसरों के लिए बड़ी दुर्लभ हैं वो अपने आप उस समय में धन में रुपये में पैसे में प्रतिष्ठा में यदि गए तो जहन्नम में चले। उस समय उनसे अनाशक्त रह करके नाक के सिर में वो चलेगा सर। जब प्रारंभ भक्ति होगी थोड़ा सा यदि सुंदर कीर्तन करने लगते मधुर कीर्तन अथवा भाषण देने की कला आ गई अथवा और सब बातें कुछ हो गई, थोड़ी सी भक्ति हो गई, नाम में रुचि होने लग गई तो प्रतिष्ठा अपने आप कहने लगेगी उसके चरणों में, बहुत लोग सम्मान करने लगे। उस समय में तरह तरह के फल सब आएंगे, उस समय मुक्ति भी हो सकता है कि हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाए और योग सिद्धियां इत्यादि जो होती हैं वो भी अपने आप सब वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे उस भक्त के। विशेष करके जिसको आसक्ति होकर के अब भावावस्था में वो आने वाली है उसकी भक्ति उन लोगों के लिए उस समय में चारों तरफ से प्रतिष्ठा मिलने लगती है, धन इत्यादि होने आने लगता है। उस समय में चेक करना, उनको जरा दूर रखना बहुत परिभाषा। लोग कहेंगे अरे ये भक्ति का फल है, जिनको इतना सम्मान रुपया पैसा प्रतिष्ठा ये सब मिल रहा है, और वो देखेगा जी ये तो हमारे लिए महाबंधन और भक्ति को उच्छेद करने वाली चीज है। इसलिए उसमें बहुत सावधान से साधक को रहना पड़ेगा, अन्यथा वो आसक्ति वाला फिर नीचे उतर जाए। इसलिए ये भक्ति अब आ रही है ना, अब भावावस्था में आने वाली है, उस भावावक्ति का चैतन्य महाप्रभु जी ने लक्षण दिया, नैनं गलदाशुधारय पतनं गदगद उद्भया कुलकर्णिहितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। ऐसी कब मेरी अवस्था आएगी, स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम करते करते करते, कीर्तन करते 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 क्या होगा, हृदय द्रवित हो जाएगा। हृदय द्रवित होने का पहला लक्षण है आंखों से आंसू अपने आप स्वाभाविक रूप में झर, कहीं ऐसा ना हो कि संसारिक भावनाओं के कारण उस समय में याद आने से कहीं आंसू ना आ जाए, ऐसा नहीं होना। या स्वभाव से ही वैसा पिछल स्वभाव है, अतः जैसे कि हम चलते हैं बरसात के दिनों में पिछल जाते हैं, मिट्टी गीली हो जाती है चीख, ऐसे स्वभाव से पिछल हैं हम। सुन करके भागवत पाठ में बकरे की भूले हुए कहीं बकरा खो गया, वो ऐसे ऐसे पाठक कर रहे हैं, वो देख करके रोने लगा कि हमारा ये बकरा कहीं गुम हो गया, हमारा बकरे की दाढ़ी, हमारे बकरे की भी दाढ़ी ऐसे ही थी, वो भी ऐसे ऐसे करता, तो रोने लग गया। भक्ति में ये सब चीज़ें भक्ति विरोधी और आभास हैं, इन सब को दूर करके जिसमें यह करता है ना, इसलिए श्रीमद्भागवत में तदस्व सारम हृदय वतेदम यदृश्यमाण हरिनाम भेय न विक्रिय विक्रिय आप जलो विकारो नेत्रे जलम भगवान के लीला कथाओं का स्मरण ऐसे होने लगेगा, इनसे रहा नहीं, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। यदि हृदय द्रवित नहीं हो तो अष्ट सप्ती विकार आने पर भी वो बेकार है, इसलिए हृदय में उसकी भावना है। हृदय यदि द्रवित हो गया तब तो सब ठीक, और हरी हृदय द्रवित नहीं हुआ और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं। इसलिए कहते हैं महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं, जब भजन जब ये परिपक्व होकर के भाव दशा आती है उसमें ऊपर से वो भाव आता है, वो जीव के हृदय का अपना नहीं है, उस समय में भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, वहां से वो भाव अनुगत्य करने से उनका वो भाव यहां पर होता है। उस समय में चित्त द्रवित, उस समय भगवान का नाम रूप गुण लीला जैसे प्रकट लीला में हुई थी वो उसके हृदय में आदि दूर होने लगती है, स्फुरित होने लगती, तब ये अपने आप होता है। इसके संबंध में हम आगे तक सबका वर्णन किए हैं। ये प्रेम की पहली अवस्था है, प्रेम का आभास। यदि प्रेम सूर्य है तो सूर्य का जैसे आभास सूर्य के नहीं उदित होने पर भी अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे प्रेम की ये पहली स्थिति है, इसी को कहते हैं भाव। किंतु यह भाव इस यहाँ का नहीं है, कोई जगत का चीज मानसिक भाव विकार नहीं है, इसको समझने में चाहिए। ये नित्य मुक्त जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं उनके हृदय में ये सत्व माने लागिनी और संबित का यह मिला हुआ सार भाव, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जब अपने आप वो होगा तब इसकी कल्पना कुछ हो सकती है, उसको व्यक्त किया जा सकता। भजन रहते थे किसी श्लोक तक पहुँचे नहीं, जिनको ये भाव उत्पन्न हो जाता है। भक्त गोस्वामी सिंधु में उसके लक्षण दिए और उसी संसार में भक्त विनोद ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के भी श्लोकों का एक माला ग्रंथन की है। उसके एक एक श्लोक एक एक मनिया है, उसमें लक्षण दिखलाया है जिसको भाव हो जाता है। उसके लक्षण क्या है पहले हम लोग उसको पार कराएं। शांति अगर तकाव विरक्ति मान शून्यता आशा अंग समुद्र कंठा नाम गानी सदा आसक्ति गुणाख्याने तत्वी स्थली इत्यादि शांति अव्यक्त कालोत्पन्न चित्त चंचल या क्षुब्ध होने का कारण भी उपस्थित होने पर, चित्त चंचल होने का या क्षुब्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी तो एकदम शांत बनेगा। शांति अव्यक्त काल उत्पन्न वृद्धा वाक्यालाप इत्यादि कुछ उनका समय एक मिनट भी बर्बाद नहीं। कृष्ण की कथाओं के अतिरिक्त और कहीं भी कोई भी बातें नहीं होता। अभी कृष्ण की कथा में आंखों से आंसू आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में तंडा वितंडा ये सब कर लिए, झगड़ा कर लिया, एक छोटी सी बात के लिए लड़ाई कर लिया मान अभिमान कर। ये उसका लक्षण नहीं है, छोटी सी कोई भी बात आ गई। और इधर तो खूब लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, प्रेम में डगमग हो रहे थे और थोड़ी सी कोई बात आ गई, थोड़ी सी कोई विरोधिता हो गई, बस एकदम बैलेंस छोड़ करके लड़ाई झगड़ा पर लाठी डंडे पर उतर। ऐसा उनका एक मिनट का सब समय भी कृष्ण की कथाओं इतर कथाओं में उनका व्यतीत नहीं, कोई काल ही उनका नष्ट, सब समय उसी में लगाया। अव्यक्त कालोत्तम विरक्ति, भगवान से इतर वस्तुओं के प्रति उनकी विरक्ति होगी और भगवान के चरण में विशेष रूप से अनुरक्ति होगी। विरक्ति मान शून्यता, सारा जगत सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छोड़ पाते। भागवत भी पढ़ लेते हैं हम लोग, पूरा सब पढ़ लेते हैं, किंतु मान और क्रोध ही यही छूटता है। जगत में तो क्रोध है, मान नहीं है, मान तो उस जगत में है, भावावस्था के बाद में, प्रेम के बाद में। अभी जो हम लोगों का जो कुछ मान जैसा है ये क्रोध का ही विकृत रूप है। तो ये मान शून्यता, आशा बंधक, कृष्ण जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे ही, आशा बंधक, समुत्कंठा, कब मिलेंगे, उत्कंठा, कब कृष्ण मिलेंगे, और किसी चीज के लिए उत्कंठा नहीं है, बस कब वो मिलेंगे इसी की उत्कंठा है। नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में सब समय, नाम कीर्तन में सब समय रुचि है। नाम कीर्तन किसको कहते हैं पहले इसको समझ लेना। ताल छंद स्वर राग से गाना ही नाम नहीं है कीर्तन। कीर्तन किसके लिए कहा गया, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन है वो क्या श्लोक, परीक्षित अभवत
परीक्षित श्रवणे
श्रवणे वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरण में व्यास जी या सुखदेव गोस्वामी ये सब लोग कीर्तन में है, नारद जी ये सब कीर्तन में है। जीवा का स्पंदन होना ही भगवान के नाम का रूप का गुण का लीला का ये सब जीवाओं का जीवा का स्पंदन मात्र न कीर्तनम भवति, और अच्छी तरह से हो तो वो संकीर्तन हो
जाएगा।
इसलिए कहते हैं नाम गाने सदा रुचि रहे और आसक्ति तद्वसत स्थले गुणाख्यान है, उनके गुणों के आख्यान में वर्णन करने एकदम तन्य हो, तदात्म हो जाए, शरीर की सुख बुद्धि में आ जाए और उसकी प्रीति होती है भगवान के प्रति। बस्ती स्वरूप नंदगांव बरसाना राधा कुंड श्याम कुंड ये सब स्थान है वृंदावन में सब चौरासी तो ब्रजमंडल में वे उसमें भी तारतम्य है, सभी तो कह दिया जाता है तो भी उसमें भी तारतम्य है। उन सब में राधा कुंड में चरण सीमा जहाँ पर कि प्रेम मूर्तिमान रूप में खड़ा है, जहाँ कृष्ण को भी लुप्त कर दिया है, ये उनके बस्ती स्थलों में थी। ये सब भाव के प्रेम के अंकुर हैं, प्रेम के अंकुर होने पर होते हैं। प्रेम का अंकुर क्या है? प्रेम यदि वृक्ष इत्यादि है तो उसका अंकुर होता है ये भाव की ये लक्षण। जब ये भाव हो जाता है तो और सबका वर्णन हमने किया, उसमें आशा हो चरण रेणुषा में उनकी हमने देखा है। यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको उदाहरण स्वरूप प्रमाण देते हुए ये कह रहे हैं, जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है तब ब्रह्मा शंकर सुखदेव गोस्वामी नारद जी ये भी ललच जाते हैं उस भाव को पाने के लिए। इनके अंदर में भी होता है कि कैसे इन भावों को हम पाए, ब्रह्मांड को के लिए क्षोभकारी बन जाता है, क्षण में कल्प और कल्प में क्षण ये भावना आती है। इसका मतलब क्या है? क्षण में एक क्षण में
कल्पत्व,
ये कल्प समान इतना लंबा बीतता नहीं एक क्षण में कृष्ण के विरह में, और एक क्षण का काल भी कल्प और कल्प का समय भी कृष्ण के साथ में व्यतीत होने पर एक मालूम होता है एक क्षण हो गया। ऐसे उसमें इसके भाव क्या, भाव इतना सहज नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा शरीर हो गया, आंख से आंसू आ गए, भाव हो गया, ऐसा नहीं। कृष्ण का भाव और रामचंद्र जी ने थोड़ा सा यही वैशिष्ट्य देखा जाता है। राम की इतनी करुण लीलाएं हैं, उसका स्मरण करने मात्र से ही हृदय पुलकित हो जाता है, आंखों से आंसू छरने लगते हैं और इसके बाद में फिर सूख जाते हैं, विषांतर में नहीं चले जाते हैं। और कृष्ण के लिए यदि एक बार आंसू आया तो जन्म जन्मांतर भी वो सूखेगा नहीं, आंखें सब समय गिरी रहेगी, हृदय पीटता ही रहेगा। यदि भाव आए भाव के साथ में इसी भाव को ये लक्षण ये दे रहे हैं। जो गोपियों का भाव देख करके ब्रह्मा इत्यादि सबके मन में क्षोभ, ब्रह्मांड भी क्षुब्ध हो जाता है, ब्रह्मा के लिए हो गए तो कुछ नहीं, सब क्षुब्ध हो जाते हैं। कैसे? उद्धव जी कह रहे हैं उनके इस भावों को देख करके, जब उन्होंने गोपियों के इन भावों को देखा, क्या देखा? भ्रमर जी भावों को सुना, उद्धव को तो उन्होंने देखा नहीं, एक भ्रमर को देखा और देख करके प्रलाप संलाप
प्रजल्प
प्रजल्प जल्प इत्यादि बहुत तरह के उद्धव ने जीवन में कभी नहीं देखा था न कभी सुना था। गोपियों में ऐसे उच्चतम भाव में सुना तो था कुछ किंतु धारणा नहीं थी, और यहाँ पर जब आया तो उन्होंने देखा, ओ गोपियों तो कितना भाव उन्नत है, धारणा नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में आशा महो चरण रेणी दुषाम, उन गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए मैं खास बन जाऊं, तृण लता बन जाऊं। फिर सोचा नहीं मैं इसके लिए योग्य नहीं, इसके लिए भी योग्य नहीं, तृण बन जाऊं, इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम आदि बहुत दूर से उसकी एक धूलि की उन्होंने करता है। किस लिए? बहुत अच्छे उनको ये भाव लगे, लोभ कुछ उत्पन्न हो गया इसलिए, किंतु वह लोभ उनका पूर्ण हुआ कि नहीं ये तो कहीं दिखता नहीं, कहीं भी वर्णन नहीं। हाँ कुसुम सरोवर में उसके पास में उद्धव कुंड में के पास में वो थे
के पास,
और गोपियां जब वहां पर परीक्षित महाराज और बज्रनाथ जी सब गोपियों को लेकर के वहां पर जब कीर्तन नृत्य किया तो उस झाड़ियों में से निकल करके आए यहाँ तक तो है, और प्रेम में झूमने लगे। प्रेम में झूमने लगे यहाँ तक तो देखा जाए, किंतु ब्रज का कोई बन गए हो, ब्रज के एक गोपी या गोपियों की किंकरी बन गए हो, अथवा एक पुष्प की लता बन गए हो, और कृष्ण ने अपने हाथों से उसका पुष्प चयन किया, यह उनको सौभाग्य मिला कि नहीं, ये तो बहुत दूर। इसलिए वो कह रहे हैं एता परम तनु दो गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भाव वांछन्ति जत भवभ्यो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्। इसको भक्त विनोद ठाकुर जी इसको लेकर के और बता रहे हैं, कहते हैं अहो ये ब्रजभूमि धन्य है। ब्रजभूमि किस लिए धन्य है कि यहाँ गोपियों जैसे ये कृष्ण के अत्यंत प्रियतमा गोपियों, इन गोपियों के लिए ये ब्रज धन्य है। मनुष्य का कर्म शरीर धारण करना तभी सार्थक होगा यदि वृंदावन में वो जन्मे या वृंदावन के ये भाव हों। कैसे भाव हों? गोप बधुओं के जैसे भाव। गोप की बधुएं कैसी थी? गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भाव। ये जो गोविंद हैं, गोविंद माने क्या? गोविंद गो माने साधारण स्तर से इंद्रियां, इंद्रियों का आनंद देने वाले। क्यों? भगवान की कथाओं से हमारी इंद्रियां भी और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गो माने वेद, गो माने गाभी, गो माने गोवत्स, गो माने गोपियां, गो वत्स, गो सखा इत्यादि जितने हैं सब इसके अंदर सबको आनंद देने वाले हैं। इस नाम को इंद्र जी ने अभिषेक करके और कृष्ण के लिए ये दिया था। ये जी गोविंद कौन है? गोविंद महादिपुरुषम तमाम भजन आनंद चिन्हमय रस प्रतिभाविता नीताधीर्य एवं निज रूप तया कला गोलो एवं निषत अखिलात्म भूतो गोविंद महादिपुरुषम तमाम आनंद फिर चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प अपेक्षा लक्ष्मी सहस्र शत शरण ब्रह्म शक्तिमान गोविंद सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंद पुरुषम आलोल चंदन वसतपन माल्य वंशी रत्नांगतम प्रणयते कला श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशं। ये साधारण नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये तो बहुत नीचे की बात। देखो यहाँ तक आ गए, ये गोविंद कैसे? रामादि मूर्तेषु कलानि निरतिष्ठा, इनके कला अंश के अंश के अंश, ये सब कलाएं हैं जो राम इत्यादि के रूपों में ये परावस्थ हैं। राम भी उनके लिए भी ये आशा है। ये कौन कर रहा? हम लोगों के गुरु के संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं गुरु
ब्रह्मा जी,
वो ब्रह्मा जी का ब्रह्म संहिता। इसलिए गोविंद ये साधारण, किंतु ऐसे में जो सब कारणों के कारण है, अनादि है, क्या वो ईश्वर परमा कृष्ण अनादिराज गोविंद, ये अनादिराज गोविंद है। किंतु इनमें लोगों की साधारण भावना होगी, ये शांत भाव से सनक सनंद नहीं जा सकते। अरे ये तो ब्रह्मांड के संचालक हैं, ब्रह्मा और शंकर विष्णु इत्यादि के भी सब अवतारों के भी मूल हैं, इसलिए उनके प्रति ऐसी शांत भाव से शांताकार। और दास्य वाले उनको देखेंगे प्रभु के हाथ जोड़ करके वंदना, ब्रह्मा शंकर अधिकृत दास है, हनुमान इत्यादि प्रेम प्राप्त दास है, परिकरों में से, और उद्धव इत्यादि भी परिकरों में से है। परिकर भी बहुत प्रकार, कोई लाल्य है, कोई बाल्य है, ये सब अधिकृत दास है। सांब अनिरुद्ध इत्यादि ये लाल्य है, और दारू और उद्धव इत्यादि ये सब लोग भी दूसरे तरह के हैं, ये लोग किंतु सब दास उनके हैं। हाथ जोड़ करके उस रूप में दास रूप में उनकी प्रार्थना करते, इनकी एक कृपा भ्रुभंगी के लिए। और सखा लोग कभी कभी अर्जुन इत्यादि तो प्रभु के रूप में देखते हैं, कहते कि हमने ये सखा किया, ये शब्द अपना लौटाते हैं, आप हमें क्षमा कर। ब्रज के सखा लोग कुछ हैं जो कल्पनियां देकर उनके साथ में, जो सुधा मैया इत्यादि जिनका लालन पालन करती है, किंतु ब्रज की जो गोपधुए हैं इनका भाव कुछ विचित्र है, इन लोगों से बहुत कुछ ऊपर है। वो कैसा है? इन लोगों का भाव रूढ़ नहीं हुआ, इनका भाव कहां तक गया? प्रेम, स्नेह, मां,
प्रणय,
राग,
अनुराग
तक दासों का, सखाओं का गया। जो दास हैं उनका मान भी नहीं जाएगा, उनका प्रेम तक जाएगा, बस यह तक समाप्त हुआ दासों का। शांत वालों का कहां तक जाएगा? प्रेम के नीचे स्थिति तक जाएगा। उनके प्रेम में लहरें नहीं, तरंगे नहीं है, उनका प्रेम शांत
निष्ठा
निष्ठा केवल है। ये प्रभु हमारे हैं, बस हमारे नहीं विश्व के हैं, और इनमें सखाओं में दासियों में आया प्रेम। प्रेम के बाद में कुछ कुछ स्नेह की थोड़ी सी पतली रेखा उनमें हो सकती, इसे ऊपर नहीं। रामचंद्र जी के प्रेम में हनुमान जी की आंखें गिली हो सकती हैं, बस यही था। हनुमान में मान कभी नहीं हो सकता, प्रणय नहीं हो सकता, मान किसको कहते हैं? छोटी बातों पर इछला गया हनुमान ने उछलाएंगे कभी? अभी संभव होगा, इसलिए हनुमान को मान नहीं होगा। तरंग है किंतु ऊंची तरंग नहीं है उसमें, इस प्रेम में, इसलिए इनका प्रेम तब होगा, स्नेह का कुछ आ जाएगा, मान नहीं होगा। यशोदा मैया इसे बढ़कर के सखा लोग हैं, सखा में अनुराग तक जाएगा, विशेष विशेष सखाओं का, सुबल इत्यादि का कहां जाएगा? वो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इनको भी पार करके कुछ महाभाव की निचली स्तर तक आएगा, वो भी सब में नहीं, प्रिय नर सखाओं में, सुबल इत्यादि। वो उनमें कब आएगा? जब कृष्ण यदि इनको किसी कारण से गोपियों के पास में कुछ काम के लिए भेजा, उनके भावों से संक्रमित होकर के उनमें आएगा, उनका अपना भाव नहीं है। ये भाव किसका है? गोपियों। वो तब जब ये लोग जाएंगे सखा सुबल इत्यादि, ऐसे लोग जब वहां पर पहुंचेंगे, अब उनका भाव ब्रह्मांड क्षोभकारिता होने के कारण उनका भाव, उनके भावों को देख करके, जैसे उद्धव गोपियों का नजर थे और उनका भाव कुछ देखा, कुछ भाव उनमें उस समय संक्रमित हो गए, गोपियों के यहां से हट गए, वो भाव भी वहीं रह गया, ये चले आए। किस लिए चले आए? उद्धव में एक गड़बड़ी थी, अजी गोपियों का इतना ऊंचा प्रेम, और दिन रात विलाप करती हैं, रोती हैं, इनका कितना दुख है, और यदि प्रभु ने हमको भी त्याग कर दिया तो हमारी क्या ऐसी ही दशा होगी, मैं भी तड़पते तड़पते मर जाऊंगा, मुझे तो ये सहा ही नहीं जाएगा। उसको उनका क्षेत्र ही नहीं था, वैसा उर्वरा उनकी जमीन नहीं थी, थी जो वो पौधा प्रेम का, वो पौधा इतना विकसित और पल्लवित पुष्पित हो सके, इतना ऊंचा गोपियों का भाव है ने? इसलिए उद्धव जी लौट करके चले आए, प्रभु आप वहां पर जाते हैं, आपको तो जरूर चलना चाहिए। तो बस कृष्ण रोने लग गए। बस उद्धव जी का फिर वही रह गए। फिर आए, यदि गोपियों का भावी उनके लिए इतना लोभनीय था तो उनको आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आए? डर गए, डर करके, क्योंकि उनका क्षेत्र ही नहीं था, इसलिए वही पर आ गए। हाँ, प्रशंसा तो करते, हाँ ये गोपियों इतना थे, अच्छा तो तुम गोपियों की दासी होकर के उनके यहाँ रहो, इतना रोते रोते तब न जाने क्या होगा, डरते हैं तपस्या पीछे से। कृष्ण के जब लीला अंतर ध्यान हो गई, कृष्ण परधाम को चले गए, जब जब कृष्ण ही नहीं रहे, अब कहाँ हूँ, अब गोपियों के यहाँ जाऊँ, जब उनकी चरण धूली, गोपियाँ तो नहीं है, उनकी चरण धूली रही उसी में लोट पोट कर, क्योंकि कृष्ण वहीं पर नहीं है, इसलिए इसी के लिए वो कह रहे हैं। अच्छा, ये दासों का ही रहता, यशोदा जी का भाव वात्सल्य का, वो वात्सल्य का भाव अनुराग तक जाता है, वो महाभाव तक नहीं पहुंचेगा,
अनुराग के चरम सीमा तक,
क्योंकि बिरहणी गोपियों के पास में यशोदा जी मिल करके और उनसे नहीं रहने तो वो भाव संकृति में हो सकता था, किंतु दोनों भाव शत्रु है, वात्सल्य और श्रृंगार में, दोनों में 3 और 6 का संबंध है, वो एक साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए मेरे संक्रमित भाव नहीं हुआ। दासों में कुछ हो सकता है, सखाओं में हो जाएगा, किंतु वहां पर नहीं, इसलिए उनका प्रेम जितना है अनुराग तक जाता है, भाव नहीं ऊपर का आएगा, इसलिए कहते हैं गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, जो निखिलात्मनि समस्त आत्माओं के परम वो आत्मा है, उस जो जगत के शिष्य स्थिति प्रलय करने वालों ईश्वरों को भी सर्वेश्वर ऐश्वर्य है, उनके प्रति ऐसी भावना कि वो मेरे हैं, ये भावना तो होना सहज नहीं, ये रूढ़ भाव होना बड़ा कठिन है, किंतु गोपियों में ही देखा जाता और किसी में यह रूढ़ भाव नहीं। अब रूढ़ भाव किसको कहते हैं, निखिलात्मनि रूढ़ भाव, ये गोपियों की रूढ़ भाव, हम लोग इसकी धारणा नहीं कर सकते, कभी रूप गोस्वामी ने थोड़ा सा इसका इसका जो आभास दिया है, हम लोग इसको सहन करें, और किसी जन्म में यदि वैष्णव की ऐसी कृपा होगी तो हम इसको कुछ कुछ अपनी धारणा में ला सकते, इसके शब्द भी वैसे हैं जो साधारण लोगों के लिए बोधगम्य नहीं है, कह रहे हैं रूढ़ भाव किसको कहते हैं, जब प्रेम स्नेह मान प्रणय के बाद ऊपर उठता है, प्रणय में आता है, कभी कभी प्रणय से मान और कभी कभी मान से प्रणय, यह प्रणय दो प्रकार का, मैत्र और सख्त, पुनः सख्त से सुसख्त और सुमैत्र, सख्य वाला भाव बहुत ऊंचा है मैत्री से, या केवल मात्र जहां नहीं होगा जहां पर कि मदीय भाव, इसका तृप्त कहीं हो नहीं सकता, मदीय माने क्या, कृष्ण मेरे हैं, ये कब होगा, जबकि स्वाधीन भक्तिका का भाव होगा, स्वाधीन भक्तिका माने कृष्ण मेरे अधीन है, मैं जैसे कृष्ण को कहूंगी वैसे चल, वही परमदीय भाव होता है, और नहीं होगा, इसलिए और दूसरा गोपियों का नहीं है, केवल राधिका के पक्ष वाली हैं उन्हीं में होगा, और उनमें ही होगा कृष्ण अधीन, यही प्रणय जबकि आगे बढ़ता है, प्रणय से राग होता है, राग माने राग किसको कहते हैं, जब रंग जाता है, रंग देता है हृदय, ये भी बहुत तरह के रंग हैं, रंग कैसे है, कुछ कच्चा रंग है कुछ पक्का रंग है, वह पक्का रंग जो कभी भी उतरता नहीं है उसका, ये मंजिष्ठ राग कहलाता है, हाँ इसका पहले वाला निर्मा राग, वो थोड़ा सा उतना तेज गहरा नहीं होता, उसका रंग उतर सकता है, वो भी उतरता तो नहीं है, किंतु उसमें भी कुछ चीजें हैं जो नहीं है, तो इस तरह से वो शख्स में प्रेम को नया नए रूप में अनुस्वादन कराता है, अनुभव कराता है, स्वादन कराता है। तब मंजीषा राज्य होता है मदीय भावयुक्त, जिसको मधु स्नेह भी कहते हैं, वो बढ़ करके वहां पर होता है। घृत स्नेह नहीं, घृत स्नेह में कुछ मीठा मिलाना पड़ेगा, घी में कुछ बुरा मिलाओ तब खाओ तो मीठा लगे। वैसे घी चिकना तो है, खाने में चिकना ही लग जाए, ये भी खाने में ऐसा रोटी में चुपड़ दो घी तो अच्छा लगेगा, किंतु बुरा के साथ में घी में चुपड़ी हुई रोटी कैसे लगती है। ऐसे मधु में कोई मिठाई मिलाने की जरूरत नहीं है, मधु अपने आप मधु मीठी होती है और घी चलता है, इसलिए मधु स्वयं ही आस्वाद्य है। यही पढ़कर के तब होता है राग, ऐसे शादी नहीं होगा जो नवीन नवीन रंगों से चित्त को रंग देता है। जब यही अपनी प्रौढ़ावस्था को आता है तो ये अनुराग करता है, प्रति क्षण अनुमाने नए नए रूप में ये दिखता है अनुराग। जब यही अपनी स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर जावत आश्रय विधि को धारण करता है तो इसको महाभाव कहते हैं। अब इन शब्दों को भी समझना बड़ा भारी कठिन, अभी महाभाव के वर्णन भी रूढ़ का यहां पर वर्णन किया गया है, तो रूढ़ कैसा होगा। तो महाभाव कहते हैं स्वयं संवेद्य दशा में, स्वसंवेद्य दशा को जब प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जो प्रेमिक और प्रिया को दोनों को ऐसे रंग देगा जो दोनों ये भूल जाएंगे जो हम रमण हैं, ना सो रमणी ना सो रमण, मैं कृष्ण हूं, मैं राधा हूं, मैं रमणी हूं, वो रमण है, ये सब कुछ विस्मृत हो जाएगा और संसार को भी विस्मृत कर देगा। तब ये होगा जाओ आश्रय रीति, मैंने प्रेम के एक विषय एक आश्रय, प्रेम के विषय कृष्ण, वो रसराज महाभाव अवस्था में मदसराज में वो अंतिम स्थिति है। जैसे एक फूल है, पहले तो पेड़ लगाया, पेड़ में पत्ते आए, पत्ते के बाद में क्या होगा, कली आए, कली से क्या होगा, कुछ मुकुलित अवस्था में थोड़ी थोड़ी खिले, फिर कुछ अर्ध विकसित होगी, अर्ध विकसित में अभी गंध नहीं आया उसमें और रूप भी वहीं विकसित हुआ, वो थोड़ा थोड़ा अब जब अर्ध विकसित हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा सुगंध, थोड़ा थोड़ा मधुरिमा, थोड़ी थोड़ी मधुरिमा, अब भौरे उसके पास में आएंगे किंतु बैठे नहीं जब, थोड़ी देर के बाद में वो और खिल गया, उसमें अब सुगंध भी आई, माधुर्य भी उसमें आया, अब भौरा रह नहीं सकता और जो मड़रा रहा था वो वहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, बैठने की चेष्टा करेगा, और जब वो पूर्ण विकसित हो जाएगा तो उसे पूर्ण रूप से मधु भीतर से पराग आ जाएगी, माधुर्य आ जाएगा और अपनी चरम अवस्था तक वो सुगंधित हो जाएगा, उस समय आसपास की भूमि को सर्वत्र वो मदमत्त कर देगा, यहाँ तक वहां से जो हवा आएगी उसमें भी प्रवेश करके दूर तक जाकर के सबको एकदम ऐसा, ये है उसकी पूर्ण अवस्था। ऐसे ही प्रेम की परावधि जब जिसमें होएगी तो वो कृष्ण में होगी और किस में, राधिका जी में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर सब गोपियों को ले लो, सब गोपियां महाभाव सब गोपियों में होता है, सब पक्ष की गोपियों, रुक्मिणी सत्यभामा में कदाचित कहीं उसकी गंध आ सकती है, पुरारी तंगी लपसी इत्यादि में कुछ थोड़ा सा देखा जाता है, बहुत ऊंचा उनका भाव, तो उस समय में संवेद्य दशा में भूल जाना स्वयं, जब मैं कौन हूं, मैं राधा हूं कि कृष्ण, दोनों भी भूल जाते, दोनों मिलकर के एक हो गए, और एक होकर के कैसे कर्म किया, विराग की आग पर और उनको गर्म कर दिया, दोनों मिलकर के एक हो गए और उसमें रंग मिला दिया, उसी समय में वो रंग पक्का हो गया। ऐसे ही दोनों का प्रेम एक में मिल करके तब एक हो जाता, उस समय नाश हो रमणी नाश हो, उस समय में ये सब भूल जाते
प्रेम मिला।
इसको कहते हैं स्वयं संवित दशा और जावताश्रय वृत्ति, प्रेम के आश्रय हैं कृष्ण अपनी पूर्ण अवस्था में, किशोर अवस्था में समस्त गुणों के जितने प्रकार के उस समय गुण है किशोर अवस्था के सब में परिपूर्ण रूप में उनमें परस्पुर माधुर्य है, लावण्य है और सब चीज है। और आदिकादि में भी वैसे ही तो उस वृत्ति में पहुंच करके सब जगत को एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं। उस समय में ये रूढ़ भाव जब यही भाव महाभाव और परिपक्व हो जाता है तो उसमें ऐसी स्थिति होती है अष्टशाब्दिक भाव हुमायूं से लेकर के आरंभ होता है, हुमायूं ज्वलित
दीप्त
दीप्त
उद्दीप्त
उद्दीप्त सुदप्त तो उद्दीप्त अवस्था में आता है और उस समय में क्षण कल्पत्व एक क्षण भी कब कृष्ण के विरह में कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, दिन भर तो बाहर गोचारण, गोपियां वहां पर खड़ी हैं अपने घर के पास में, कृष्ण का जो वहां तक तो आए दिन भर तक किसी प्रकार से उनका बीत गया, किंतु वही एक कल्प एक क्षण जो निकट आ रहे हैं वो आ नहीं रहे ऐसा मत कब कब आए कब आए, इसलिए वह एक क्षण भी और उनका एक कल्प भी कृष्ण के साथ में जब है एक कल्प जैसे रास ब्रह्मा जी की एक रात्रि रास में वो एक क्षण में बीत गया, कब बीत गया उनको पता नहीं चला। ये अभी तो राजा जी कहते हैं या गोपिया कहते हैं अरे हम लोग तो अभी आए ना, अभी चंद्र को देखा पूरब की तरफ में, ये पश्चिम में कब चला गया, अभी तो देखा पूरब की तरफ में उठ रहा था और अभी देखा जैसे पश्चिम में चला गया, आज मालूम रात ही नहीं हुई ना क्या, ऐसे सो ये है एक कल्प। उस ब्रह्मरात्रि में कितने कल्प चले गए, एक कल्प है एक कल्प ऐसा हो जाता है, उसको कहते हैं रूढ़ भाव। उद्धव जी इस रूढ़ भाव को देख करके कह रहे हैं ओहो इन्हीं का जीवन सार्थक है, गोपियों का जो कि गोविंद के प्रति इनका ऐसा रूढ़ भाव है, वन क्षति जत भवोभियो, संसार से डरने वाले मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु लोग वांछन्ति मुक्ति की रक्षा की इच्छा करने वाले लोग इसकी वांछा करते हैं और मुनयो वांछन्ति मुनि लोग कौन, नाग प्रवृत्ति जितने मुनि लोग हैं साधारण मुनि नहीं, कर्मकांड की शाखा पर बैठे हुए मुनि लोग जो होते हैं या ज्ञान की शाखा पर बैठे हुए जिसकी शाखाएं हरिद्वार और काशी इत्यादि में फैली हुई वो शाखाओं पर नहीं, ये तो वृंदावन की सुरम्य लताओं से पताओं से भरी हुई डाल पर बैठने वाले प्रेमा भक्ति रूपी डाल पर बैठने वाले ही ये मुनि के लिए यहाँ पर मुनयो ऐसे मुनि मुनियो वो उसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने व्याख्या की है गोपी गीत में मुनियो मुनि यहाँ के मुनि जो युवा है वेणु गीत का इसमें प्रायण मुनयो बने तो वो मुनि ये सब मुनि वयंच वयंच माने ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे या सुखदेव गोस्वामी के बदले यहाँ पर उद्धव के लोग हम लोग जो हैं हम लोग भी उन रूढ़ भावों को पाने की लालसा करते हैं। वांछन्ति माने क्या
इच्छा कर रहे हैं
अभी भी पार इच्छा कर रहे हैं अभी तक वर्तमान काल है ना वर्तमान अभी भी हम वांछा ही कर रहे हैं अभी पाए नहीं है अभी प्राप्त नहीं कर सकते केवल वाणी ये कर रहे हैं। तो जो भाव से भीत जो हैं ज्ञानी लोग और मुक्ति चाहते हैं, इनके लिए तो कभी संभव पड़ता है। फिर तो ये लोग भी इच्छा कर सकते हैं, कब इच्छा कर सकते हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते। इस पराब ये पराभक्ति है। यदि वैसे ज्ञानी लोग भी जो ब्रह्मभूत हैं, छह प्रकार के जो दोष है, जन्म मरण और सब है, जानते अस्थि वक्त नहीं, और दूसरे रूप ब्रह्मभूत का लक्षण आप आत्मा अभत आत्मा विजरो विशोको, ये सब जब भाव आ जाए तो ये ब्रह्मभूत होगा। तब उसमें कोई संसार की वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, आप्त काम हो जाता है और किसी चीज से दुखी नहीं होता, सब जगह समदर्शी हो जाता है। ऐसे लोग यदि वैष्णवों का संग करें, रसिक वैष्णवों का, तब होगा ये परामुक्ति के अधिकारी, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये लोग चाह सकते हैं, हो सकता है, किंतु उनके लिए संभव नहीं। साधारण मुनियों के लिए भी संभव नहीं। श्रुतियां भी इसको चाहती हैं ना, श्रुतियां भी राज को देख करके उनके अंदर में लालसा जगी और वो लोग भी जौतुकी के रूप में उसको पीछे से साधन करके आ रहा था।